Good morning. और आज सभी को हैप्पी नवरात्रि। आज से स्थापना शुरू होती है, देवियों का आवाहन होता है, देवियों का श्रृंगार होता है और भक्त अपनी भिन्न भिन्न मनोकामनाओं के साथ देवियों की पूजा अर्चना भी करते हैं। आज पहला दिन है, पहली देवी का स्वरूप मां शैलपुत्री कहते हैं। शैल माना पर्वत, पर्वत की पुत्री अर्थात वो मां पार्वती का स्वरूप कहते हैं। बाबा हमें कहता है तुम्हें सच्ची पार्वतियां हो, तुम ही देवियां हो, तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। इसके लिए बाबा रोज भिन्न भिन्न ज्ञान के पॉइंट्स से हमारा श्रृंगार करते हैं। देवियों को कहते शिव शक्ति, तो आज बाबा कहते तुम्हारी शक्ति कौन सी है। शिव की शक्ति मिलती है हमें तो हमारी शक्ति कौन सी है। आज बाबा ने कहा तुम्हारी शक्ति है श्रीमत्। तुम श्रीमत् से बलवान बनते हो, श्रीमत् से स्वराज्य पाते हो, श्रीमत् से निर्विकार बनते हो, श्रीमत् से शांति स्थापित करते हो, इसलिए तुम्हारी शक्ति है श्रीमत्। और हमारे जो देवियों के हाथ दिखाते हैं, हमारी भुजाएं हैं, वो भुजाओं की ताकत श्रीमत् है। ओम शांति। आज है 22 सितंबर 2025। मीठे बच्चे अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे। अगर जानते तो इतना नीचे क्यों उतरते और ढूंढते क्यों। जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। आज का प्रश्न है, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है, कौन सी और कैसे। ये हमारा जो ब्राह्मण धर्म है उसी एक धर्म में ही ताकत है, बाकी कोई धर्मों में तो अभी ताकत रही नहीं है। तो हमारे जो ब्राह्मण धर्म में ताकत है वो कौन सी और कैसे। उत्तर है, तुम तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा ये ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। तो एक श्रीमत पर चलने से, सच्चा ब्राह्मण बनने से कितनी बातें होती है। बाबा ने कितनी बातें लिस्ट में बताई। ओम शांति। बीचे बीचे रूहानी सिकी लधे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं जरूर। कल्प नाम रख दिया है जो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। ये बातें एक बाप ही बैठ समझाते हैं। ये बातें और कोई हमें समझाता नहीं है, क्योंकि ये कल्प का ज्ञान, ब्राह्मण बनने का ज्ञान और किसी को है ही नहीं। ये कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते, ये गारंटी है, कॉन्फिडेंट है। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप वो एक ही है। बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं, जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। हमें जितना बाबा का परिचय मिला है, हम बाबा के समीप जाते हैं, कोई शिवलिंग भी देखेंगे ना तो हमें अपना लगेगा, ये अपने बाबा की मूर्ति है, बाबा का चित्र है। इतना गहराई से कोई बाबा को जानता नहीं है। कोई को पता नहीं गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं। तो बहुत प्यार होना चाहिए। गॉड फादर तो कहते हैं, लेकिन जितना हम प्यार से बाबा को याद करते, इतना प्यार उनको आता नहीं। बेहद का बाप है जो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं, हेवनली गॉड फादर। बहुत सी वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में अच्छे लगते हैं, उसका मीनिंग क्लियर होता है। उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करो तो इतना भाव नहीं बैठता है। तो बाबा कहते हैं ये इंग्लिश में बहुत अच्छा है, हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को, और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को। परंतु स्वर्ग को कोई जानते नहीं, सन्यासी तो मानते ही नहीं। सन्यासी तो स्वर्ग को मानते ही नहीं, क्योंकि वो स्वर्ग में आने वाली आत्मा ही नहीं है, उसके अंदर वो संस्कार ही नहीं है, वो मुक्ति वाली आत्माएं हैं। वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेवनली गॉड फादर ये अक्षर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर भी है। तुम बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल उसका सारा चक्र सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता है। जो जो सर्विसेबल हैं सभी तो एक रस सर्विसेबल नहीं बनते। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, फिर से तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। अभी हम बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, वो मत हमें इतनी शक्तिवान बना देती है जो हम पूरे हेवन पर राज्य करते हैं। ऊंचते ऊंच बाप की ही श्रीमत है। श्रीमत किसको कहेंगे? एक बाप की। और कोई भी धर्म आत्माएं या साधु संत भी मत देते हैं उसको हम श्रीमत नहीं कहेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। श्रीमत भगवत गीता भी गाई हुई है। यह है पहले नंबर का शास्त्र। बाप का नाम सुनने से ही जट क्या याद आ जाता है? बाप का नाम सुनने से ही जट वर्षा याद आ जाता है। ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉड फादर से क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग सिखाया किसने। वो तो कृष्ण ही कहेंगे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम समझते हो बाप ने ही राजयोग सिखाया जिससे सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। चाहे हमें मुक्ति चाहिए तो भी राजयोग है, जीवन मुक्ति चाहिए तो भी राजयोग है। ये भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आया था, उसकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा भी गुम हो गई है, जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है। बाबा को भी वंडर लगता है, जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है उस बाप को भूल गए हैं। इसको कहा ही जाता है एक कज भूल। ये एक इतनी बड़ी भूल हो गई, इसने सब कुछ भूल गया, और वो सब कुछ भूलने के साथ सब कुछ गंवा दिया। बड़े से बड़ी भूल ये है जो बाप को नहीं जानते। कभी कहते वो नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते कच्छ मच्छ का अवतार है, ठिक्कर भीतर में है। भूल में भूल होती जाती है, एक भूल होती है तो फिर उससे भूल से भूल हो जाती है, क्योंकि एक अनुमान करते हैं फिर अनुमान पर अनुमान होता है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, कलाएं कम होती जाती है, तमो प्रधान बनते जाते हैं, तो फिर क्या होता है? बाबा कहते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठिकर भीतर में कह देते हैं। कितने बड़े बाबा को ठिक्कर बित्तर में ला दिया। अभी बाप समझाते हैं, तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो, कुछ भी किसको पता नहीं है। ड्रामा क्या है पूछते रहते हैं, कहते नहीं ये ड्रामा है, लेकिन ड्रामा क्या है वो पूछते रहते हैं। ये दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी, तो क्या कहेंगे, कहेंगे लाखों वर्ष की है। और कहेंगे लाखों वर्ष आगे है, समझते हैं पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, इसलिए आराम से रहते हैं, जो करना है करो, अभी तो बहुत वर्ष पड़े हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। गायन भी है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, बाप ही आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं, रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी हैं अंत में, टाइम तो लगता है ना, बाबा कहते मैं लास्ट में आता हूं, टाइम तो लगता है ना, कितना टाइम लगता है बाबा को आने में, टाइम लगता है या बाबा वेट करते हैं कि ड्रामा का अंत हो तब मैं जाऊं। ये भी बच्चों को समझाया है ज्ञान में इतना समय नहीं लगता है, ज्ञान तो कितना जल्दी समझ लेते हैं, 7 दिन का कोर्स किया, थोड़े दिन ज्ञान में चले, औरों को समझाने भी लग पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान में इतना समय नहीं लगता जितना याद की यात्रा में लगता है। ऐसे देखो तो याद की यात्रा में क्या टाइम है, बस सेकंड में बिंदु बने और उड़े। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है, आज से 5000 वर्ष पहले किनों का राज्य था, वो राज्य कहाँ गया। तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है, तुम हो कितने साधारण, बाबा कहते तुम हो कितने साधारण, अजामिल जैसे पापी, अहिल्याएं, कुब्जाएं, भीलनियां, उनको कितना ऊंच बनाते हैं। बाप समझाते हैं तुम क्या से क्या बन गए हो। बाबा को भी वंडर लगता है मैंने आपको कितना ऊंच बनाया, स्वर्ग की राजधानी दी, राजा बनाया, जब मैं लास्ट में आया तो आपको किस रूप में देख रहा हूं। बाप आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का हाल देखो क्या है। बाबा को तो वंडर लगेगा ना, बाबा कहां छोड़ के गए थे और आकर के क्या देखते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते हैं, बाप क्या कहते, बाप कहते तुम अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो। क्या पूछो, आगे कुछ जानते थे, कुछ भी नहीं, अभी जानते हो। बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है, किसी को कहेंगे हमको विश्व की बादशाही मिलती है तो क्या समझेंगे कि क्या मिल रहा है इनको, क्या बनेंगे, कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकते। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप से कितना बार राज्य लिया है। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। कब सुना ही नहीं कि हमारा बाबा हमको ऐसे पढ़ाएगा और हमारी ऐसी सदगति करेंगे, वो कभी सुना ही नहीं। अभी अर्थ सहित तुम समझते हो, तुम बच्चे हो, बाप को तो याद कर सकते हो। बाबा कहते हैं दुनिया भले नहीं कर सकती, तुम तो बच्चे हो, तुम तो याद कर सकते हो। आजकल छोटेपन से ही गुरु कर लेते हैं, गुरु का चित्र बनाए भी गले में डालते हैं व घर में रखते हैं। यहाँ तो वंडर है, बाबा कहते हैं वहाँ गुरु का चित्र रखते हैं, घर में फोटो रखते हैं, गले में लटकाते हैं केवल एक गुरु का। यहाँ तो वंडर है, बाप शिक्षक सतगुरु तीनों एक ही है। बाप कहते हैं मैं साथ में ले चलूंगा, ऐसा कौन बोल सकता है गारंटी के साथ? बाबा ही बोल सकते हैं कि मैं तुमको साथ ले चलूंगा। तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, वही पूछते हैं ना, आप लोग रोज सुबह जाते हो क्लास में तो क्या पढ़ते हो, तो बाबा कहते हैं क्या आंसर देना। शुरू शुरू में कोई माताएं सुबह सुबह क्लास में आती थी ना, तो उसको पूछते थे लोग तुम क्या जाके पढ़ते हो, क्यों जाते हो सुबह सुबह, तो कहते थे हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो लोगों को वंडर लगता था कि ये लोग डायरी पेन लेके जाते हैं और कहते हैं हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये बाबा हमें सिखाते हैं, बोलो क्या बोलना वो भी बाबा सिखाते हैं। बोलो हम नई दुनिया में राजा ही प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। ये है ही राजयोग, जैसे बैरिस्टर योग होता है तो जरूर बुद्धि का योग बैरिस्टर तरफ जाएगा। टीचर को जरूर याद तो करेंगे ना। तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए ही पढ़ते हैं। दुनिया में मिनिस्टर आदि बनते हैं तो उसकी कोई कॉलेज नहीं होती है, स्कूल नहीं होती है। कोई सीएम बनेगा, पीएम बनेगा, इसकी कोई कॉलेज थोड़ी होती है। हम तो विश्व की राजाई पाते हैं तो बाबा ने कितनी बड़ी कॉलेज खोली है, कोई भी बन सकता है पढ़ करके। कौन पढ़ाते हैं? बाबा हमको नशा भी चढ़ाते हैं, निश्चय कराते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा, भगवान। उसका नाम तो एक ही है जो चलाया है। रथ का नाम तो है ही नहीं, मेरा नाम है ही शिव। शिव को जानते हैं, शिव शिव करते हैं, लेकिन शिव बाबा कैसे पढ़ाएंगे वो उनको कोई आइडिया नहीं है। तो बाबा कहते हैं बाप शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे। अभी तुम जानते हो ये कितना वंडरफुल है, शरीर तो एक ही है, इसको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? ब्रह्मा बाबा को भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा कहते शिव बाबा की प्रवेशता है तो जरूर दो आत्माएं ठहरी, एक ही शरीर के अंदर दो पावरफुल आत्माएं हैं, तो भाग्यशाली रथ हुआ ना। ये भी तुम जानते हो, और किसको तो ये ख्याल में भी नहीं आता। अब दिखाते हैं, भागीरथ ने गंगा लाई, क्या पानी लाया? भागीरथ ने गंगा लाई तो बाबा कहते क्या लाया? पानी लाया। अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो, क्या लाया है, किसने लाया है, किसने प्रवेश किया है? बाप ने किया ना। मनुष्य में पानी थोड़ी प्रवेश करेगा, जटाओं से बाल से पानी कैसे निकलेगा? जटाओं से पानी थोड़ी आएगा। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते, कभी ख्याल भी नहीं करते तो फिर वो समझने की कोशिश भी नहीं करते। कहा ही जाता है रिलीजन इज माइट, रिलीजन में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? रिलीजन तो बहुत है दुनिया में, तो बाबा कहते हैं बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? किसी ने बताया ब्राह्मण रिलीजन में। बाबा ने कहा हाँ ये ठीक है, जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में ही है, और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं है। कितना बाबा हमको निश्चय से कहते हैं, कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं है, एक ब्राह्मण रिलीजन में ही ताकत है। ताकत होगी तब तो परिवर्तन होगा, निर्विकार बनेंगे, दिव्यता आएगी। तुम अभी ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से, जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है? तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा? क्योंकि वो तो समझेंगे ना, ब्राह्मण माना जो क्रियाकर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो ब्राह्मण है। विराट रूप भल बनाया है, परंतु वो भी आधा है। वो जो भक्ति मार्ग में विराट रूप का चित्र बनाते हैं ना, उसमें देवता निकले, असुर निकले, क्या क्या निकलते जाते हैं, लेकिन उसमें ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं विराट रूप भल बनाया है, परंतु वो आधा है। जिस चित्र में ब्राह्मण नहीं, शिव बाबा नहीं, तो आधा ही कहेंगे ना। मुख्य रचता और उसकी पहली रचना को कोई नहीं जानते। बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी, इसमें ताकत है। बाबा ने जो विराट रूप का चित्र बनवाया है उसमें ब्राह्मण चोटी टॉप में रखा है, उससे क्लियर हो जाता है कि बाबा हमें कैसे चरण से पैरों से सीधा चोटी में ले जाते हैं, ये क्लियर हो जाता है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे ना। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण हो, देवताओं से भी ऊंच हो, तुमको अब ताकत मिलती है, अब शक्ति का दिन चालू हुआ। तो आज बाबा बार बार ये पक्का करा रहे हैं कि ब्राह्मण बनने से, श्रीमत पर चलने से, योग लगाने से तुमको ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। सबसे जास्ती ताकत है ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या करते हैं, क्या करते हैं ब्राह्मण? सारी विश्व को शांत बना देते हैं। कौन बनाएगा? हम ब्राह्मण ही तो बनाएंगे। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सद्गति करते हैं श्रीमत के द्वारा। तब बाप कहते हैं, तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूं। शिव बाबा से भी हम ऊंच हैं, ऐसे तो बाबा है ही ऊंच। बाबा नहीं बनाते तो हम कैसे बनते? लेकिन बाबा बच्चों को नशा चढ़ाते हैं कि मैं अपने से भी ऊंच बनाता हूं। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। सारे विश्व पर तुम राजाई करेंगे। कितना नशा है, कितनी बड़ी बात है। अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है। कभी महिमा के गीत गाते, कभी क्या बोलते? सब कहेंगे भारत हमारा सबसे महान है, हम भारत देश के हैं, भारत की कितनी महिमा गाते हैं। फिर दूसरी तरफ क्या करते हैं? दूसरी कभी कहते भारत की क्या हालत है। जानते नहीं कि भारत इतना ऊंच कब था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नर्क यहाँ ही है। जिसको धन मोटर आदि है, सारी फैसिलिटी है, सुख सुविधाएं हैं, पैसा है, तो कहेंगे ये स्वर्ग में है। ये नहीं समझते कि स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। यहां सब कुछ सीखना है। बाबा कहते हैं सारा हमें संगम पर ही सीखना है। साइंस का हुनर भी फिर वहां काम में आता है। ये साइंस भी वहां सुख देती है। यहां तो इन सब से है अल्पकाल का सुख। वहां तुम बच्चों के लिए ये स्थाई सुख हो जाएगा। अभी जो हम साइंस को यूज करते हैं वो तो टेम्परेरी करते हैं, अल्पकाल के लिए करते हैं, लेकिन यही साइंस हमें भविष्य में स्थाई सुख शांति देगा। यहां सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी जो सीखेगी। बाबा कहते और कोई सतयुग में नया नहीं आएगी आत्माएं जो वहां साइंस को यूज करेगी या साइंस को डेवलप करेगी। नहीं, अभी से ही तुम्हें ही संस्कार भरना है। यहां के बच्चे ही साइंस सीख कर वहां चलते हैं। ये सब कुछ जो कुछ भी हमें मकान बनाना है, बिजली चाहिए, सोलर चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, सबको यहां से ही ले जाना पड़ेगा। वहां कुछ नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं यहाँ के बच्चे ही साइंस सीखकर वहां चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहां काम में आएंगे। अभी है अल्पकाल का सुख। फिर ये बॉम्ब्स आदि ही सबको खलास कर देंगे। मौत के बिगर शांति का राज्य कैसे होगा? तो इन शॉर्ट तो यह हुआ ना, पहले साइंस को सब के खत्म करने के लिए यूज करना पड़ेगा। यहां तो अशांति का राज्य है, ये भी तुम्हारे में नंबरवार है जो समझते हैं। हम पहले पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। सुख में बाप तो आते ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए ना। भक्ति मार्ग में सबकी मनोकामनाएं पूरी करने आता हूँ। बाबा करते हैं सबकी मनोकामनाएं पूरी, लेकिन आगे रखते हैं बच्चों को, सब कहेंगे देवी ने हमारी मनोकामना पूरी की। तो आगे तो देवियां आई, जो करने वाला बाबा गुप्त रहा। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं, देवियों को सजाए पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। पहले गणेश जी को किया, अभी देवियों को करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे सजाएंगे फिर डुबो देंगे। वो कार्टून भी आता है ना आजकल, वो गणेश जी हैं, वो उसकी माता के आगे रो रहे हैं, कहते तुम नहीं जाओ धरती पर। वो लोग तो खिलाया पिलाया मुझे सजाया, फिर सारे शरीर में फ्रैक्चर, मुझे कैसे फेंक दिया, तुमको भी ऐसा करेंगे। कितना खर्च होता है पूछो, ये सब कब से शुरू हुआ है, तो कहेंगे परंपरा से चला आया है। कितना भटकते रहते हैं, ये भी सब ड्रामा है। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं। ये देवताएं कितने मीठे हैं, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी उन्हों की पूजा करते रहते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम उच्च प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते हैं, क्या कहते हैं बाप खुद कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। ऊंच से ऊंच भगवान की है श्रीमत। गीता में भी श्रीमत मशहूर है। श्री कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया है। कितनी वंडरफुल बात है, कभी किसकी बुद्धि में आएगा ही नहीं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है, कितनी बार समझाएंगे कितनी बार समझाएंगे, अंदर पल्ले पड़ेगा ही नहीं जब तक उस आत्मा का पार्ट न खुले। तुम उच्च सर्विस करते हो तो ये प्राइज मिलती है, तुम बाप के मददगार बनते हो तो क्या होता है, जब हम बाप के मददगार बनते हैं तो सबको प्राइज मिलती है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है, तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो, तुम रूहानी सेना हो। आज बाबा बार बार हमारी शक्ति को इमर्ज करते हैं, हमारे को अपनी स्मृति दिलाते हैं, ये सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर ही है, केवल स्मृति में लाओ। मिलिट्री वालों को हमेशा बैज लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता। बाबा ने कहा तुम रूहानी सेना हो, तुम ये बैज नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि ये भी रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री वालों को हमेशा बैज लगा हुआ होता है, शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता, वहां इन देवताओं का राज्य था अब नहीं है। फिर बाप कहते हैं सारी बातें समझा के, मुख्य बात है मन मना भव, देश सहित सब संबंध छोड़, माँ में कम याद करो तो श्री कृष्ण की डिनाइस्टी में आएंगे। इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं। किस बात में लज्जा नहीं आनी चाहिए? बाबा ने कहा बाप की याद रहेगी। बाप इनके लिए भी बताते हैं, ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देते हैं, बाप इनके लिए भी बताते हैं, ये नारायण की पूजा करते थे, नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी, चलते फिरते उनको देखते थे। तब हमको क्या करना है? हम तो नारायण की मूर्ति लेके नहीं घूमेंगे। तो इस एग्जाम्पल से बाबा हमको क्या कहते हैं? अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बैज तो जरूर लगा रहना चाहिए। तुम हो नर को नारायण बनाने वाले। अभी तो किसी को वो शुरू शुरू में होता होगा कि बैज लगाने में लज्जा आती है, आजकल तो किसी को नहीं आती क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे फैंसी बैज हैं, तो सब प्यार से लगाते हैं, शौक से लगाते हैं। और नॉन डीके होते हैं ना, वो भी बैज मांगते हैं। शिविर वाले, कॉन्फ्रेंस वाले आते हैं, वो भी, उनको भी पसंद आता है, वो भी कहते हैं हमें बैज चाहिए। राजयोग भी तुम्ही सिखलाते हो, नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हैं। अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो, बाप है शिव बाबा, बाप दादा कहते हैं ना, तो बाप है शिव बाबा, दादा है उनका रथ। बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेंगे ना। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने, सन्मुख बैठने से याद पड़ती है, बाबा आया है ले जाने के लिए। बाप सन्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहां भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। वहां माना घरों में रहते हो, सेंटर पर रहते हो, बाबा कहते ऐसे नहीं मधुबन में आए तो ज्यादा याद रही, तुम वहां भी बढ़ा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज बाबा ने नवरात्रि पर अपनी शक्तियों को, अपनी ताकत को स्मृति में दिलाया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं, ऐसा मीठा बना हूं। दूसरी पॉइंट, बाप की श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत पर चल, अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। वरदान, आज देवियों के पास सभी वरदान मांगेंगे। बाबा हमें रोज वरदानों से भरपूर करते हैं ताकि हम दूसरों को दे सकें। वरदान है खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। उसका क्लैरिफिकेशन है, खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत माना सेवा दी है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले। सदा यही नशा रहे कि हमें स्वयं खुदा ने खिदमत दी है, कार्य करते हुए जिसने कार्य दिया है उसको कभी भूला नहीं जाता। तो कर्मणा सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शन अनुसार कर रहे हैं, तो सहज याद का अनुभव करते सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। आज इसी महीने सितंबर मास का अव्यक्त इशारा पुरुषार्थ के लिए पॉइंट चल रही है। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप याद की विश्व संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। ओम शांति।
सभी मधुबन के समर्पित भाई बहने आपके लिए आवश्यक सूचना है, सुन के जाएं। हम सभी जानते हैं हमारे प्रिय आदरणीय भ्राता निर्वेर भाई जी को अव्यक्त वतनवासी हुए एक वर्ष पूर्ण हुआ है और इसी के निमित्त सभी समर्पित भाई बहनों को याद सौगात दी जाएगी। कल शांति वन में 10:30 बजे तक सभी समर्पित भाई बहनों को कॉन्फ्रेंस हॉल में एकत्रित होना है, वहां आप सभी को याद सौगात दी जाएगी और ट्रायल वालों का बाद में बताएंगे। कल का कार्यक्रम समर्पित भाई बहनों के लिए है और जो शांति वन से आए हैं और अभी क्लास में बैठे हैं जरा हाथ उठाए, काफी सारे हैं। आप सभी के नाश्ते की व्यवस्था ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में की गई है तो आपसे यही सहयोग की अपेक्षा है कि आप ऊपर के डाइनिंग हॉल में जाकर के ही अपना नाश्ता स्वीकार करेंगे। दोपहर का भोजन पर भी अगर आप होंगे तो वो भी वहां ही मिलेगा आपको। ओम शांति।
तुम हो निहारनी।